हैरत की बात है, असबाब ही कोई नहीं थे, कोई कहानी नहीं थी। सन 6 हिजरी में जब मुसलमान उम्रे की नियत से पहुंचते हैं, जिसको तारीख में सुलह हुदैबिया के नाम से हम जानते हैं, ऐन मक्का पहुंचने के करीब लोगों ने रोक लिया, कहा नहीं कर सकते आप उम्रा, वापस जाए। इतनी वन साइडेड वहाँ सुलह नामा हुआ, जिसको ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के नाम से आप पढ़ सकते हैं, जाके किताबों में भी देखिए, कि हज़रत उमर बोल उठे, अल्लाह के नबी क्या हो गया आपको, आप क्यों इतना दब रहे हैं, क्या आप सच्चे नबी नहीं, हाँ हूँ। अल्लाह के नबी क्या हम हक पे नहीं, हाँ, फिर आप क्यों इनकी ऐसी बातें मान रहे हैं, कहा उमर चुप करो, उमर मैं जानता हूँ। और वहाँ से उनकी वन साइडेड बातें मान के बाहर, ये पहला और आखिरी मौका है कि अल्लाह के नबी सहाबा कराम को कुछ कहें और वो ना करें। आपने कहा कि हराम खोल दो, हदी के जानवर यहीं ज़िबा होंगे, उठा ही नहीं अपनी जगह से। वाहिद मौका इतना आपके ऊपर, जिसको आज की ज़बान में कहें कि आप डिप्रेस हुए होंगे कि मैं इनको कह रहा हूँ और ये नहीं कर रहे। आप अंदर हुजरे में आ गए अपनी बीवी के पास, उम्मे सलमा थी। फिर अच्छी बीवी ऐसे वक्तों में शोहरों की मदद करती हैं, उन्होंने कहा नहीं आप गम ना करें, असल में सहाबा कराम गम का शिकार है। आप सोचें ना, हम यहाँ से नॉर्वे से प्लेन में जाएँ या जद्दा, और जद्दा एयरपोर्ट से वापस कर दिए जाएँ, क्या दिल को लगेगा। और वो तो ऊँटों और घोड़ों पर और पैदल गए थे। का सदमे का असर है, अल्लाह के नबी वो आपकी बात सुनते हैं। आप ऐसा करें, जाके अपना अहराम खोल दें, तो आप देखिएगा फिर क्या होता है। कहा अच्छा, आपने बीवी से मशवरा लिया और माना। अच्छे मर्द मशवरा करते भी हैं और लेते भी हैं और मानते भी हैं, इसी तरह अच्छी बीवियाँ भी। खैर, आप बाहर गए, आपने अपना अहराम खोला, बस आपको ये अमल करता दे के फिर सहाबा ना पीछे हटे। ऐसे लग रहा था एक दूसरे के बाल काटते काटते गर्दने काट देंगे। सब ने उस हुक्म पर अमल किया, अपने जानवर काटे, और टूटे हुए दिलों से वापसी का रास्ता है। और अभी बारस मदीना नहीं आया कि इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, सूरत फत नाजिल हो गई कि हमने आपको फतेह मुबीन दे दी। सुलह हुदैबिया असल में फतेह हुदैबिया थी। कैसे? किसी की एक शर्त पे अमल ना करने की वजह से मक्का वालों ने गदर किया, धोखा दिया, जंग कर ली जो कि नहीं करनी थी। और सन 8 हिजरी, 7 हिजरी के वाक़ात में 2 मारूफ वाक़ा ज़हन में रख लीजिए, के साथ में एक तो आपने आके सबको दावती खत दिए, जंगों का सिलसिला ख़त्म, क्योंकि हुदैबिया में एक शर्त लिख दी गई थी कि 10 साल तक मक्का वालों से कोई जंग नहीं होगी। हम होते कहते चलो छुट्टियां मिल गई 10 साल की, अब कोई काम नहीं। काम एक ही दिन नहीं होगा जिस दिन कब्र में होंगे, नम का नौ मतिल रोज, सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है। एक मोमिन सारी ज़िंदगी काम करता है, जंगों से ज़रा सी जान थोड़ी हल्की हुई तो कहा दावत देते हैं, बड़े बड़े बादशाहों को ख़त भेजे, ये ऐसे ही जैसे आज के अमेरिका के सदर को भेजे, कोई चाइना के, कोई जापान के। और आज याद रखिए, जो लीडरशिप के लेवल पे आ रहे हैं उनको, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना पैगाम पहुंचाएं, लेकिन शर्त यह है कि वो कौन सा इस तरीके से उनको करें कि जिसकी वजह से हकीकत में उनको पता चल जाए कि इस्लाम क्या होता है। इतने लोगों तक इस्लाम का पैगाम गया, आपने ईरान के बादशाह को, मिस्र के, यमामा के, दमिश्क के, उम्मान के, इसी तरह के शाह हफशा को ख़त भेजा, किसी ने दावत मानी, किसी ने ना मानी, हत्ता के फिर 7 हिजरी को आप उमरतुल कज़ा के लिए वापस गए उम्र मक्का में। काफरों पे इतना रोब तारी हुआ कि मक्का खाली करके पहाड़ों में छुप गए। 3 दिन तक आप बड़े सुकून से उमरा करके आए, हालांकि मौका था कि आप उस वक्त गन पॉइंट पे मक्का पे हम कब्ज़ा कर लेते, कहा नहीं हम वादा नहीं तोड़ेंगे अपना। वापस आए उसके सिर्फ 1 साल के बाद, सन 8 हिजरी को आपको ख़बर मिली कि मक्का वालों ने अपना माहदा तोड़ दिया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरा ये सफ़र दूसरों तक ना खुले जब तक कि मैं वहाँ ना पहुँच जाऊँ। और आपने बग़ैर एक खून बहाए, कोई एक तीर तोड़े, मक्का को फतह किया। इतना उसने खौफ और हरास हो सकता था, लेकिन आपकी लीडरशिप, अच्छे लीडर जो होते हैं ना वो बड़े बड़े मराहल को तय कर लेते हैं, कुछ मसला नहीं होता। और इस तरह सन 8 हिजरी में मक्का फतह होता है। अल्लाह के नबी पहली दफ़ा आप मक्का में जाके हरम में अपने हाथ से बुत तोड़ते हैं। यहाँ एक बड़ा शौरी जुमला बोलूँगी और मैं चाहूँगी कि आप भी इसको लें ताकि हमें भी इस्लाम की दावत देनी आए। 13 साल मक्का में आप रहे, इस्लाम आ चुका था ना, 8 साल अब ये मदीना के भी लगा लें, कितने साल हो गए, 21 साल, और हरम के अंदर बुत पड़े हुए, किसी को नहीं छेड़ा आपने। आप अपनी इबादत करते थे, उनको छेड़ते नहीं, क्योंकि उनको छेड़ना खुद को खुदकुशी के बराबर था। तैयारी नहीं थी अभी आपकी, कोई स्टेटस नहीं है, और दूसरों के मुल्क में जाके आप उनकी चीज़ें तोड़ें, आपको कहता कौन है आप वहाँ रहें, चले जाइए आप वहाँ से, कानून मानना पड़ेगा। होता क्या कि अल्लाह के नबी ने उस मौके पर फिर जाके काबा को पाक किया, और उस वक़्त फिर अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था मदीना वालों के सामने, और उनके दिल धक धक कर रहे थे। इतने उनके प्यारे वाक़ियात हैं कि दिल रो पड़ता है उनकी बातें सुन के। कहने लगे अब तो मक्का फतह हो गया, आए तो इसलिए थे ना कि मक्का वाले नहीं रख रहे, अब तो ये इधर ही रहेंगे। आप अंसार की ये बात जान गए, फिर आपने उनको जमा किया और कहा मेरा मेरा जीना भी अंसार के साथ है, मेरा मरना भी अंसार के साथ है। तकरीबन 19 दिन, कुछ रवायात में 13, कुछ फ़र्क है करते, आप वापस मक्का से मदीना आ गए। फिर आपने मदीना में रहकर वहाँ के जो काम थे उनको देखे। सन 9 हिजरी में गज़वा तबूक हुआ, ये ऐसे ही है जिसको मैं बड़े शौर से अगर कहूँ कि दुनिया का सबसे छोटा मुसलमान मुल्क इस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर से जाके लड़े। खबर मिल गई कि ये हिरकल जो है ये सब अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं, फौजें जमा कर रहे हैं सरहदों पे मुसलमानों के खिलाफ। कहा अच्छा, वो बाद में आएगा, हम चलते हैं। टूटी हुई तलवारें, जैशुल उसरा कहते हैं, 18 लोगों के हिस्से में एक ऊँट आया। 17 लोग वॉक कर रहे हैं, टर्न का वेट कर रहे हैं, और 18वां बंदा उतरता है तो फिर 17वें को मौका मिलता है। इस तरह वो गए, पाँव पे चीथड़े बांधे, खून निकलने लगा। एक खजूर मिलती थी एक सहाबी को एक दिन में, और उसके बाद वो खाते हुए पिघल पिघल के चूस लेते थे तो फिर दूसरी खजूर मिलती थी। बाद में लोगों ने कहा कि कैसे, ये क्यों खजूर आपने खाई, एक खजूर से बनता क्या था। कहा ये उस दिन पता चला जब वो भी ना रही। ऊँटों को फिर अखीर काटना पड़ा, उनके जो ओजड़ी का पानी है वो तक पिया। ये इस्लाम ऐसे हलवा पुलाव जर्दा खाते हुए नहीं आया, वल्लाह ही साथियों, ये बड़े लोगों की कुर्बानी है, ये जड़ का सफ़र है। शुरू के लोग जो कुर्बानियाँ देते हैं, बाद वाले उसका फल खाते हैं। इस तरीके से अल्लाह के नबी ने एक महीने की मुसाफत, और उस वक़्त सब पोल खुल गए। अल्लाह ने कहा दूर का सफ़र है, कोई भी नहीं जाएगा, और मुनाफिक बैठे बातें कर रहे थे ये जा रहे हैं लड़ने रोमियों से, देखेंगे किसकी मरने की खबर आती है। जब मुसलमान सफ़र करके गए उनके इलाके में, इतना उन पर रोब तारी हुआ, सब बिखर गए, सामना नहीं हुआ। वहाँ बैठे एक महीना आपने वहाँ स्टे किया, आओ भाई किस में जरूरत है, आओ हमसे बात करो। कैन यू बिलीव दिस, नो वन कैन डू। और आखिर मुसलमान वहाँ से फतह याब है, सब के दिलों पे रोब आ गया। अब इस्लाम मक्का मदीना हजाज से होते हुए तबूक और मुल्क शाम तक पहुँच रहा है। अब वापस आते हैं, ये सन 9 हिजरी था, और उसके बाद फिर आखिरी साल जो सन 10 हिजरी है, कि जिसमें फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी के दौरान फिर मक्का में हज का मामला हुआ। मुसलमान हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत अली के साथ हज किया। अब मक्का में मना किया गया कि इस साल के बाद 4 माह का इंतज़ार कर लो, अब कोई काफिर नहीं आ सकता यहाँ। और सूरह तौबा के आगाज़ में उसकी सारी डिटेल है। तो यहाँ पे फिर अल्लाह के नबी सल्लम का वो दौर शुरू हो गया कि ऐसे लगता है कि वो सूरत नाजिल हो गई कि इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रायतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह हो जाए तो फिर तुम देखो कि लोग कैसे इस्लाम में जौक दर जौक आते हैं। ये सूरत तो अच्छी थी, खुशी की बात थी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। लोगों ने कहा अबू बकर ये रोने वाली बात है, ये तो खुशी की बात है कि इस्लाम गालिब हो गया। कहा नहीं, हर अरूज के बाद जवाल है, असल में अब ये नबी सल्लम की वफ़ात की खबर है। क्योंकि हर लीडर का एक काम होता है, और जब वो काम कर लेता है तो अल्लाह ताला उसको वहाँ से ले जाता है, चाहे दुनिया से ले जाए या उस जगह से ले जाए। जिन्होंने फ़ायदा उठाना होता है वो उठा लेते हैं, बाकी हाथ मलते रह जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम कुछ दिन बीमार रहे, और वह रबी अव्वल का ही महीना था, 12 रबी अव्वल थी जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लम ने अपनी जान जाने आफरीन को सुपुर्द की। आपकी बीमारी के दिन पढ़ लीजिए, आप उनकी ज़िंदगी को देखे आखिरी वक्त पे काम क्या किए। इंशाल्लाह एक सेशन सिर्फ आपको इस पर दूँगी कि अल्लाह के नबी ने अपनी बीमारी के दिनों में क्या काम किए। यकीन करें 15 से 20 टॉपिक है। आखिरी दिन तक भी नमाज़ें पढ़ाते रहे, मामले करते रहे, अपनी फ़िक्र उनको लगी हुई थी कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए। किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दीन हम तक पहुँचाया। और आपकी वफ़ात की खबर जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दी गई, रोई। जब आपकी कब्र खुद रही थी और आपकी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में से कब्र खोदने की आवाज़ें आ रही थी, तो फातिमा के ज़ुबान पे इशारे, कहती हैं कि जिब्राइल को कौन खबर दे कि अल्लाह के नबी चले गए। जिब्राइल अब आप कैसे आएंगे, एक बूढ़ी औरत रो रही है, इतना रो रही है कि जाके सहाबा ने उनको तसल्ली दी कि अल्लाह के नबी इंसान थे, यहाँ से वो अच्छे हाल में है, दुनिया में तो इतने ही उनके सामने चैलेंजेस थे। तो कहने लगी इस पे तो नहीं रो रही, रो इस पे रही हो कि वही का सिलसिला बंद हो गया, अब जिब्राइल नहीं आएंगे, अब ये कुरान नाजिल नहीं होगा। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती वरदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। वो दीन तो पूरा हो गया, अब अल्लाह के नबी को जाना था, वो चले गए दुनिया से। जो गया वो मरने के बाद क़यामत से पहले वापस नहीं आएगा, आप जो मर्ज़ी जतन कर लें, लेकिन क्या जाने वाला कुछ दे के जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह का नबी हमें कुछ दे के गया, वो क्या था। एक मौके पे एक सहाबी थे, उन्होंने लोगों को बाजार में भाव ताव करते चीजें खरीदते बेचते देखा तो एक ऐलान किया, कहा लोगों तुम यहाँ बैठे हो, वो फलां मस्जिद में अल्लाह के नबी का विरसा बट रहा है। अब विरसा पाना किसको अच्छा नहीं लगता। लोग भागे भागे गए, क्या हो जरा आपका विरसा ले जाके देखा, अंदर कोई दौलत माल चांदी सोना नहीं है। क्या देखा कि एक आलिम है और वो दर्स दे रहा और लोग बैठे बातें सुन रहे। कहने वाले को कहने लगे ये तुमने क्या कहा, कहाँ है भाई विरसा बट रहा? कहा ये बट रहा क्योंकि नबियों का विरसा इल्म होता है। तो मेरी अजीज बहुत ही काबिल एहतराम साथियों, हम सब अगर अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो नंबर एक 12 महीने वाली मोहब्बत करनी है, एक महीने वाली नहीं। आप किसी से एक दिन मोहब्बत करके उसका हक नहीं दे सकते अगर बाकी दिनों में आप उसको नहीं पूछते। दूसरी बात है कि अल्लाह के नबी से के मिशन से प्यार करना, जिस दीन को वो पहुँचाते हुए इतनी तकलीफें खा के गए, हमने उस दीन के लिए कुर्बानियाँ देनी है। आज अपने लिए हम ये डिसीजन लें कि हम कैसे अल्लाह के नबी सल्लम के तरीक़ों पर चल सकते हैं। अमली चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है कि हम आपकी ज़िंदगी को देखें। अब आप देखिए कि इन्हीं सालों में हमने तो सिर्फ आपका जंगी पहलू देखा, आपकी चार बेटियां थीं, उनकी शादियां भी हुई, उनके निकाह हुए, उनके बच्चे भी होते, हत्ता कि आपकी एक बेटी का बच्चा फौत भी हुआ। अल्लाह के नबी सल्लम की बेटी का बच्चा बीमार था, मैं आपको पैगाम भेजती हूँ कि अब्बा बेटे की बच्चे की तबीयत ख़राब है। आप उस वक्त अल्लाह के किसी दीन के काम में मसरूफ़ थे, आपने कहा कि मैं नहीं आ सकता, तुम बच्चे के लिए इस तरह इलाज करो और दिस एंड दैट। फिर थोड़ी देर गुजरी और पता चला कि अब तो बच्चा फौत हो गया। फिर अल्लाह के नबी वहाँ गए और कहा इन्ना लिल्लाहि मा खज़ा व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बि अजलिन मुसम्मा फलतसबिर व तहतसिब। सब कुछ अल्लाह का है जो उसने लिया और जो अभी भी है, हर चीज़ एक ख़ास वक्त तक के लिए हमें मिलती है, लिहाजा अल्लाह के फैसले पे सब्र करो और इस पे अजर की उम्मीद रखो। क्या अच्छा हमारे गम ऐसे हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई एक खुदा न खास्ता गम आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, फिर किधर जाती हैं हमारी हालतें। आप अपनी बीमारी के दिनों में सहाबा का सहारा लेकर आ रहे हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं लोगों अस्सलातु वमा मलकत ईमानुकुम, लोगों नमाज और अपनी औरतों और अपने ग़ुलामों का ख्याल रखना। आखिरी वसीयत आपकी है कि औरतों का ख्याल रखा करो, उनसे नरमी रखो, ग़ुलामों पर ज़्यादा बोझ ना डालो और नमाजों को गार्ड करो, उसको देखो और दिस एंड दैट। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लम ने दीन पहुँचाया। आज हमारी खुशियाँ कैसी हैं, गम को तो एक तरफ करते हैं, आइए खुशी की बात कर लें। सिर्फ एक खुशी अल्लाह देता है और खुशी देने वाले के लिए हमारी नमाजें चली जाती हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बस हमें वो खुशियाँ दें जिसमें अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो उसकी तौफीक से जहाँ तक हम पहुँचे।
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد